ये आकाशवाणी है। अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्री बैठक में शामिल होने के लिए आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे हैं। दो दिन की यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर परिषद के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। यात्रा के दूसरे चरण में डॉ जयशंकर मंगलवार को जर्मनी जाएंगे। डॉ जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री बृहस्पतिवार को स्विट्जरलैंड जाएंगे। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की तीन दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ संयुक्त अरब अमीरात के कई मंत्री और व्यापार शिष्टमंडल भी आया है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का कार्यक्रम है। श्री नहयान राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है और यह युवाओं को अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का पूरा उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भाषाओं की समृद्धि के मामले में भारत एक अनूठा देश है। श्री धनखड़ ने सभी से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच होने के साथ ही चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। जम्मू के रामबन जिले में एक सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने के कांग्रेस पार्टी के दावों की आलोचना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल पलौरा में एक रैली में विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दोहराया। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पहले ही राज्य में चुनावी सभाएं कर चुके हैं। इस बीच भाजपा ने 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद जवाहर सरकार ने राज्यसभा से त्यागपत्र देने और राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क के नाम पर 8,000 रूपये मांगने के पत्र से धोखाधड़ी के लिए लोगों को आगाह किया है। सरकार ने ऐसे किसी भी दावे को खारिज किया है। बिहार में बक्सर दानापुर रेलखंड की डाउनलाइन पर रेल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस की दो बोगियों के बीच कपलिंग फेल होने के बाद 9 डिब्बे इंजन से अलग हो गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लखनऊ में एक इमारत के ढहने से मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री राहत कोष से दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस बीच दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। 28 लोग घायल हैं। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से दिल्ली में तीन सेनाओं के अधिकारियों के लिए पहला संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रणनीतिक योजना बनाना, भविष्य के खतरों, चुनौतियों और संघर्षों का अनुमान लगाना तथा उनके प्रति स्वयं को तैयार करना है। पेरिस पैरालंपिक खेलों का समापन आज देर रात हो जाएगा। समापन समारोह फ्रांस के नेशनल स्टेडियम स्टेड डी फ्रांस में होगा। तीरंदाज हरविंदर सिंह और स्प्रिंटर पीटी पाल पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। कल देर रात नवदीप सिंह के स्वर्ण और सिमरन शर्मा के रजत पदक के बाद भारत के पदकों की कुल संख्या 29 हो गई है, जिससे पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।